समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 4:30 बजे और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारी जानकारी। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आपके लिए होंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समाचार और चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास, जानेंगे क्या खास है उनके पास। मैं हूं निखिल कुमार, मेरे साथ में है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, स्वागत है आपका भी।
स्वागत है, तो नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग, आई बेग योर पार्डन, वेरी गुड आफ्टरनून निखिल। ये सब गलतियां थोड़ी हो जाती हैं कभी लाइव टेलीकास्ट में,
हम लोग ज्यादातर मॉर्निंग में ही मिलते हैं।
जी जी जी। एंड टुडे बीइंग October 14th, इट इज इंटरनेशनल नेशनल डिजर्ट डे, अ डे टू सेलिब्रेट एंड इंडल्ज इन स्वीट ट्रीट्स people, and we all should be celebrating it by enjoying various desserts like cakes, cookies, pies and ice creams, or by making our own sweet creations at home.
Bilkul.
And of course it is a festival time also, so why not indulge in sugar and honey and everything nice and pleasant. Life is short, so let's make it sweet. And now time to apprise our listeners with all that is making headlines at this hour. Nikhil.
Bilkul. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुख उखना ने नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल की वार्ता की। दोनों देशों ने मानवीय सहायता, आवृजन, खनिज संसाधनों और सहकारिता को बढ़ावा देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
बीजेपी रिलीजेज इट्स फर्स्ट लिस्ट ऑफ 71 कैंडिडेट्स फॉर अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस ऑफ बिहार। होम मिनिस्टर अमित शाह लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर ऑफ एनएसजी इन मानेसर हरियाणा, अनाउंसेस एनएसजी हब इन अयोध्या।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुरानी वैश्विक संरचनाओं के सुधार का पक्षधर है।
टू टेररिस्ट किल्ड इन एन एनकाउंटर लॉन्ग लाइन ऑफ कंट्रोल इन मच्छिल सेक्टर ऑफ कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
चालू वित्त वर्ष में अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रह में 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।
And in cricket, India clean sweeps 2-match test series defeating West Indies by 7 wickets in the second test in New Delhi today. And Nikhil, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about building inclusive workplaces, Nari Shakti at the heart of Viksit Bharat.
सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो।
Yes, there is no force more powerful than a woman determined to rise. There is no limit to what we as women can accomplish.
बिल्कुल, नारी स्वयं में पूर्ण है, उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं।
And today we are focusing on the increasing role of women in the economy and the workplace, a transformation that is not only redefining industries but also reshaping society as we know it. It's a story of strength, resilience and progress. From boardrooms to startups, shop floors to scientific labs, women are no longer just participants in the workforce. They are the leaders, innovators and change makers.
अध्ययन से पता चलता है कि जिन कंपनियों में लैंगिक विविधता ज्यादा होती है, वे आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करती हैं। महिलाएं अद्वितीय दृष्टिकोण, सहयोगात्मक नेतृत्व शैली और उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता लेकर आती हैं। कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी सीधे तौर पर किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देती है, और कह सकते हैं जब महिलाएं काम करती हैं तो अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती हैं।
बट इट्स मोर देन जस्ट नंबर्स। वुमेन ब्रिंग डिफरेंट लीडरशिप लाइफस्टाइल्स, ऑफन मोर कोलैबोरेटिव, एम्पैथेटिक एंड इंक्लूसिव, व्हिच एक्चुअली लीड्स टू बेटर टीम परफॉर्मेंस एंड इनोवेशन। एंड विद मोर ड्यूअल इनकम हाउसहोल्ड्स, फैमिलीज आर बेटर सपोर्टेड फाइनेंशियली। दैट मींस बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। वुमेन इन लीडरशिप ऑफन एडवोकेट फॉर बेटर policies like parental leave, flexible work and mental health support, which benefits everyone.
बिल्कुल, नेतृत्व में विविधता अधिक नैतिक निर्णय लेने, समावेशी नीतियों को बनाने और मजबूत कॉरपोरेट जिम्मेदारी की ओर ले जाती है, और पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान उद्योगों जैसे कि तकनीक, विनिर्माण या फिर कानून में महिलाएं न केवल चर्चा में शामिल हो रही हैं बल्कि उसे बदल भी रही हैं। श्रोताओं, जब हम राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो रोजगार और समान वेतन तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाने से आय असमानता कम होती है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा भी मिलता है।
And Nikhil, India has witnessed a remarkable increase in the female workforce participation rate nowadays. Labour and Employment Ministry has said the female labour force participation rate has increased from 23% in 2017-18 to around 42% in 2023-24.
और अनुजा, यहाँ पर एक उल्लेखनीय बात हमारे लिए ये भी है कि विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक में भारत ने ब्रिक्स देशों में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी में सबसे अधिक उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। मंत्रालय का कहना है कि ये वृद्धि महिलाओं के आर्थिक समावेशन में देश के तेज बदलाव को दर्शाती है, जो कौशल, ऋण और औपचारिक रोजगार तक पहुंच बढ़ाने वाली लक्षित नीतिगत गतिविधियों से प्रेरित है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
The government has taken various women-centric initiatives to promote inclusivity in the workplace, workplace wellness, and holistic well-being of female employees in the government service. These measures include exemption of fee from competitive examinations, grant of 730 days child care leave, posting of husband and wife at the same station, and grant of 180 days maternity leave. A range of employment and skill development initiatives have been launched by the government across ministries to enhance women's participation in the workforce and equipping them with market-relevant skills. One-stop centers have been established to provide comprehensive support to women facing violence, offering medical assistance, legal aid, psychological counseling, and shelter services under one roof. As India moves towards the vision of a Viksit Bharat by 2047, the empowerment of women at work is not just a priority, but a defining force of national progress. With Dipendra Kumar, Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
Just imagine a nation where every woman from rural artisan to urban innovator steps into the workforce, not as a participant, but as a powerhouse, driving economic transformation. This is the promise of Viksit Bharat that envisions a developed India by 2047, centering economic inclusion of women and empowering them through education, skills, safety and entrepreneurship to unleash Nari Shakti for national growth.
और श्रोताओं, आपको बता दें कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रमुख स्तंभों में से एक है कार्यबल में महिलाओं की कम से कम 70% भागीदारी सुनिश्चित करना, जिससे वे भारत की विकास गाथा में समान रूप से भागीदार बन सकें। भविष्य केवल भागीदारी की ही नहीं बल्कि समान भागीदारी की भी मांग करता है, जहां महिलाएं और पुरुष मिलकर समावेशी, टिकाऊ और न्याय संगत अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करें, चाहे वो लड़कियों के लिए स्टेम शिक्षा हो, मेंटरशिप कार्यक्रम हो या फिर नीतिगत सुधार हो। अगला कदम कार्रवाई का है, यहां तक कि सरकार, निगम और व्यक्ति सभी की ओर से ये होना चाहिए।
And in conclusion, we can say over the last decade, India is witnessing an unprecedented transformation in women's workforce participation. With landmark reforms, expanding skill development, enhanced maternity and childcare benefits, and initiatives like Mission Shakti, the government has created a strong foundation for inclusive and supportive workplaces. The steady rise in women joining the labor force, the surge in women-led enterprises, and the mainstreaming of gender-sensitive policies signal a new era where Nari Shakti is powering the nation's growth.
श्रोताओं, ग्रामीण उद्यमियों से लेकर कॉरपोरेट नेतृत्वकर्ताओं तक महिलाएं भारत के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को तेजी से आकार दे रही हैं। जैसे जैसे भारत विकसित भारत एट 2047 के विजन की ओर बढ़ रहा है, कार्यस्थल पर महिलाओं का सशक्तिकरण न केवल एक प्राथमिकता है बल्कि ये राष्ट्रीय प्रगति की एक निर्णायक शक्ति भी है। सुरक्षित, समतामूलक और अवसर समृद्ध कार्यस्थल सुनिश्चित करके देश अपनी आधी आबादी की क्षमताओं को उजागर कर रहा है और एक मजबूत, अधिक समावेशी तथा वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी भारत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
So to all the women out there, whether you are leading a team, running a household or chasing your dreams, your role in the economy is not just valuable, it's vital.
तो आइए ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं जो सशक्त हों, बहिष्कृत ना हो, और हम ये कह सकते हैं जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो समाज भी उनके साथ आगे बढ़ता है।
Yes, when women work, they don't just fill roles, they transform economies, strengthen families, lead communities and build more equitable futures.
और अब हम बात करेंगे हमारे समाज के सबसे सम्मानित वर्ग यानी वरिष्ठ नागरिकों की। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन की ऊर्जा, समय और अनुभव देश की सेवा में लगाया, और आज जब उन्हें सहारे, संवाद और सम्मान की आवश्यकता है तो पूरा देश उनके साथ खड़ा है। भारत में आज लगभग 15 करोड़ वरिष्ठ नागरिक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि बुजुर्गों का जीवन न केवल सुरक्षित हो बल्कि स्वस्थ, आत्मनिर्भर और गरिमापूर्ण भी बने। तो आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता उत्पल कुमार की ये रिपोर्ट।
मोदी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाने के लिए पिछले 11 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को निश्चित पेंशन का लाभ मिल रहा है। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 वर्ष की आयु के बाद नियमित पेंशन सुनिश्चित कर रही है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा पूंजी पर अधिक ब्याज और सरकारी गारंटी मिलती है। वहीं राष्ट्रीय वयोश्री योजना उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना के तहत उन्हें व्हीलचेयर, वॉकर, चश्मे और हेयरिंग एड्स जैसे उपकरण निशुल्क दिए जाते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन के तहत सरकार वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और पुनर्वास केंद्रों को सहायता देती है ताकि बुजुर्गों को समाज में सुरक्षित और स्नेहमय माहौल मिल सके।
हमारे देश में हमारे वरिष्ठ नागरिक भी एक आयु के बाद सुविधा के अनेक उपकरणों की जरूरत हमारे इन वरिष्ठ नागरिकों को होती है। किसी को चलने में दिक्कत, किसी को सुनने में दिक्कत, सीनियर सिटीजन्स के जीवन से इस परेशानी को कम करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। गरीब वरिष्ठ नागरिकों को भी जरूरी उपकरण मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने राष्ट्रीय वयोश्री योजना इसकी शुरुआत की। इस योजना के तहत सीनियर सिटीजन्स को जरूरी उपकरण दिए जा चुके हैं। बुजुर्गों को एक निश्चित राशि पर एक निश्चित ब्याज मिले, उनका निवेश सुरक्षित रहे, इसके लिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भी शुरू की थी।
अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ दिल्ली पुलिस भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष पहल चला रही है। दिल्ली पुलिस सीनियर सिटीजन सेल के माध्यम से हर थाने में बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंच सके। नियमित होम विजिट, हेल्पलाइन नंबर 1291 और मोबाइल ऐप जैसी सुविधाएं ये सुनिश्चित करती हैं कि राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक खुद को अकेला महसूस न करें। इस बारे में हमने बात की दिल्ली पुलिस में महिलाओं और बच्चों की विशेष इकाई की DCP अंजिता चेपियाला से। ये इकाई वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ को भी देखती है।
दिल्ली पुलिस का सीनियर सिटीजन सेल दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और सुख समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है और आप अकेले या केवल अपनी पत्नी के साथ रहते हैं तो आप दिल्ली पुलिस के साथ वरिष्ठ नागरिक के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए दो तरीके हैं। आप dillipolice.gov.in वेबसाइट पर जाके दिल्ली पुलिस के साथ आप सीनियर सिटीजन के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं, या दिल्ली पुलिस की सीनियर सिटीजन ऐप के माध्यम से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद हमारी टीम के फील्ड ऑफिसर्स यानी बीट ऑफिसर्स आपके घर नियमित रूप से आएंगे आपकी सुरक्षा और कुशल क्षेम सुनिश्चित करने के लिए। दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ, आपके सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
वरिष्ठ नागरिकों को जीवन के इस अमूल्य पड़ाव पर अक्सर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस दिशा में भी मोदी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति चाहे जो भी हो स्वास्थ्य स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पहले से ही कवर किए गए परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त टॉप अप कवर दिया जा रहा है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को इस उम्र में मानसिक स्वास्थ्य, अकेलेपन और अवसाद जैसी समस्याओं का भी कई बार सामना करना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चला रही है। इस बारे में हमने बात की एम्स नई दिल्ली में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन से।
सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास के साथ साथ हम सबों की यह भी जिम्मेदारी है कि हम लोग अपना ध्यान खुद भी रखें, एक व्यक्ति के तौर पे, एक परिवार के तौर पे और एक समाज के रूप में भी। एक व्यक्ति के तौर पर जो सीनियर सिटीजन है वो अपना ध्यान अपनी जीवन शैली को बेहतर बना करके कर सकते हैं। आसानी से पचने वाले भोजन जिसमें कि फल और ताजा सब्जियां ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो वो ले सकते हैं। साथ ही साथ वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, इसमें हर दिन टहलना, इसके साथ साथ अपनी मसल स्ट्रेंथनिंग को भी बढ़ाना। इन सभी पहलुओं के साथ साथ और ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। इसके लिए यह जरूरी है कि वो अपने आप को प्रोडक्टिव काम में लगाएं, अपने आसपास ऐसे दोस्तों को बनाएं जो कि उनमें पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते रहें।
आज हमारे समाज में भी कई संगठन वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सहज बनाने के लिए आगे आए हैं। इन्हीं में से एक है वॉकी टॉकीज, जो वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के क्षेत्र में काम करने वाला एक अभिनव स्टार्टअप है। वॉकी टॉकीज ने वरिष्ठ नागरिकों को तकनीकी, डिजिटल और घरेलू सहायता उपलब्ध कराई है। हमने बात की वॉकी टॉकीज के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुण सिंघल से और जाना कि कैसे उनका ये प्रयास वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बना रहा है।
वॉकी टॉकीज का मकसद उन सीनियर सिटीजन को सपोर्ट करना है जो अकेले अपने परिवार से दूर रहते हैं और उन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है। इस स्टार्टअप के द्वारा बुजुर्ग लोगों के घर रोज एक युवा फील्ड एग्जीक्यूटिव आएगा जो उनके रोजमर्रा के काम आसान बनाएगा और हर परेशानी में उनके साथ खड़ा होगा। अब बुजुर्गों को ब्लड टेस्ट कराने, ऑनलाइन बिल्स का भुगतान करने, रेलवे या हवाई यात्रा के टिकट बुक कराने, उपकरणों की मरम्मत कराने, स्किल्ड या अनस्किल्ड मैन पावर बुलाने जैसे कामों के लिए वॉकी टॉकी की सेवा मिल पाएगी। डिजिटल टेक्नोलॉजी की समस्याओं से निपटने में भी उन्हें आसानी होगी। आज के डिजिटल युग में फेस टू फेस बातचीत कम होती जा रही है, सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत होती है। इससे अकेलेपन की समस्याएं बढ़ती जा रही है। वॉकी टॉकी के माध्यम से सीनियर सिटीजन को दिल खोलकर बात करने के लिए एक साथी मिलेगा जो उन्हें पूरी इज्जत देगा और उनकी बात इत्मीनान से सुनेगा। अभी शुरुआत में वॉकी टॉकीज द्वारा फ्री ट्रायल की सुविधा भी दी जा रही है जिससे लोग कुछ दिन तक इस सेवा का लाभ उठाकर इसे आजमा सके। हमारी मिशन यह है कि सीनियर सिटीजन की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार लाई जाए और उन्हें टेक्निकल और हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाए।
तो श्रोताओं, याद रखिए, हमारे माता पिता, दादा दादी या फिर जो भी बुजुर्ग हमारे आसपास हैं वो हमारे अतीत का प्रतीक नहीं बल्कि हमारे वर्तमान की शक्ति और भविष्य की प्रेरणा भी हैं। तो आइए मिलकर हम सब ये संकल्प लें कि हर वरिष्ठ नागरिक को सम्मान, सहारा और संवाद मिले। और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का, उनसे ये जानने का कि क्या खास आज उनके पास है। अनुजा, कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं आज हम?
Let's talk about the National School of Drama, Nikhil. Ji. National School of Drama and Bharat Bhavan in Bhopal have signed a memorandum of understanding to support the revival of Rangmandal Repertory, which had remained inactive for over 2 decades. Addressing a press conference in New Delhi today, the director of NSD and renowned actor Chitranjan Tripathi today informed about this decision, saying this joint NSD Bharat Bhavan Rangmandal is a significant step towards presenting quality theatre to the people of Madhya Pradesh and India as a whole. He further added that the Bharat Bhavan is a cultural epicentre not only for Madhya Pradesh but for the entire nation.
जो प्रयास है उससे अधिक से अधिक नाटक खेला भी जाएगा एक दूसरे प्रांत में। अभी तक तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पास एक ही रंगमंडल है जो दिल्ली में बेस्ट है। अब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पास एक दूसरा रंगमंडल के रूप में एक कोलैबोरेटिव रंगमंडल भोपाल में होगा, भारत भवन के आनुकूल्य में, और वहाँ पर उनके प्रांगण में होगा, और भारत भवन का भी रेपर्टरी रिवाइव। सो दोनों गौरवशाली संस्थाएं जो हैं उनके लिए विन विन सिचुएशन है और रंग कर्मी और रंग प्रेमियों के लिए बहुत एक अच्छा डेवलप।
And this MOU was signed on 11th of this month in the presence of Union Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat and Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav. Moving on, let's take you all to Vijayawada. In NTR district of Andhra Pradesh, a simple drainage innovation is helping a village stay cleaner, save money and recharge groundwater. We have more details on this from our correspondent.
In Somavaram village of Nandigam Mandal in NTR district Andhra Pradesh, the Ministry of Panchayati Raj has introduced Magic Drains, a low-cost, eco-friendly solution to rural wastewater problems. Instead of carrying sewage through open concrete channels, these drains are filled with four layers of rock. This allows water from households to filter directly into the ground, preventing stagnation, mosquito breeding and foul smells. Panchayati Raj officials say it's a major cost saver. 100-meter cement drain costs nearly 4 lakh rupees, while a magic drain costs only 90,000, saving more than 3 lakh per road. Maintenance is minimal, requiring only seasonal silt removal, and the system helps replenish groundwater. In areas where full drains cannot be built, soak pits are being installed to achieve similar results. These collect household wastewater, letting it gradually seep into the soil, a benefit in drought-prone areas. Speaking on the benefits of magic drains, NTR District Water Management Agency Project Director Ramu said,
"This magic drain costs also very effective. For CC drain construction, we require 4 lakhs per every 100 meters. Whereas in magic drain, with 1 lakh rupees, we can take up magic drain and it's very useful in several ways. We can control the vector-borne diseases also. Another use is we can filter the water and filter into the ground and we can recharge the groundwater table also."
For villagers, the difference has been immediate. Streets are cleaner, mosquito nuisance has reduced and children can play without waterlogged surroundings. Residents say the village feels fresher and more hygienic than before. Allu Murali for Parikrama, Akashwani News, Vijayawada.
श्रोताओं, आजकल अतिरिक्त कैलोरी बर्न करने के लिए जिम में कसरत करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या हो अगर हम जो कैलोरी बर्न करते हैं उसका इस्तेमाल अपने मोबाइल फोन या फिर दूसरे छोटे उपकरणों को चार्ज करने में भी कर सकें? इस अभिनव विचार को वर्तमान में CSIR के राष्ट्रीय अंतर्विषयक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम द्वारा विकसित किया जा रहा है. हमारे संवाददाता स्मृति एम पल्लुरथि से ये रिपोर्ट.
द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी NIIST तिरुवनंतपुरम इज डेवलपिंग एन यूनिक प्रोजेक्ट दैट कुड सून लेट यू चार्ज योर मोबाइल फोन जस्ट बाय वॉकिंग आउट. साइंटिस्ट्स एट दिस इंस्टीट्यूट आर यूजिंग हाइब्रिड नैनो जनरेटर टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट ह्यूमन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी. द आइडिया इज वेरी सिंपल. व्हाइल यू आर एक्सरसाइजिंग इन द जिम और वॉकिंग थ्रू एन एयरपोर्ट, द एनर्जी योर बॉडी producers can be captured and used to power small devices like mobile phone. As part of the project, the institute has developed an innovative pedal-assisted exercise system. It allows users to generate electricity through movement. On one hand, it promotes a healthy lifestyle and on the other, it supports sustainability by powering small gadgets. One of the biggest challenges for researchers was the creating a standard output, something as simple as a regular socket that could work with multiple devices. Now, with the use of common adapters, the system can charge almost any small device. The experimental system will first be installed in the institute itself. After successful trials, it will be tested at Thiruvananthapuram International Airport. But that's not all. NIIST is also working on smart tire technology. The smart tires will have built-in sensors to monitor air pressure and road conditions in real time, powered entirely by energy generated from the tire's own movement. Using electric nano-generator technology, the smart tires won't require any external power. This breakthrough could lead to self-aware tire monitoring systems for the next generation cars. With innovations like this, the institute is pushing boundaries of how we think about energy, health, and sustainability. Smithy M. Pallurithi, Akashwani News, Thiruvananthapuram.
और श्रोताओं, आपको बता दें, भारत ने आज दिल्ली में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-0 से जीत ली है. मैच के पांचवें दिन आज भारत ने 121 रन के लक्ष्य को 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने नाबाद 58 रन बनाए, जबकि साई सुदर्शन ने 39 रन का योगदान दिया. भारत ने वेस्टइंडीज से लगातार 10वीं टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला जीती है.
And if we talk about the business news of the day, benchmark domestic equity indices, Sensex and Nifty opened higher but failed to hold on to their initial gains. For most of the intraday session, the indices remained in the red and eventually closed over 0.3% down today. The Sensex lost 297 points to close at 82,029, while Nifty dipped 82 points to settle at 25,145.
और अब हम याद करेंगे महान स्वाधीनता सेनानियों को, बात करेंगे उन महान व्यक्तित्वों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है।
We remember the great freedom fighter and one of the founding members of Gadar movement, Lala Hardayal, who was born on 14th October in 1884 in Delhi. A widely read person, Hardayal turned down a career in the Indian civil service and with his intellectual acumen, inspired many expatriate Indians living in Canada and the USA to fight for India's independence movement.
He was associated with Shyam Krishna Varma and Bhikaji Kama.
Lala Hardayal studied in the Cambridge Mission School and received his bachelor's degree in Sanskrit from St. Stephen's College in Delhi. In 1905, he received two scholarships of Oxford University for his higher studies in Sanskrit. However, in a letter to the Indian sociologist published in 1907, he started to explore anarchist ideas, arguing that our object is not to reform government, but to reform it away. And moving on, we also pay tribute to the Kuchipudi dancer, Shobha Naidu. The world of Kuchipudi lost one of its finest exponents as eminent danceuse, choreographer and teacher Dr. Shobha Naidu passed away on this date. And Shobha Naidu was a renowned dancer. She received the Padma Shri in 2001 for her contributions to the art of dance. And she was known for her graceful performances and her efforts in popularizing Kuchipudi both in India and abroad.
आज जयंती है बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य की. वे असमिया साहित्यकार, नाटककार, निबंधकार और कथाकार थे. उनके द्वारा रचित उपन्यास इयारुई इंगम के लिए उन्हें 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और फिर 1979 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. आपको बता दें कि समाजवादी विचारों से प्रेरित बीरेंद्र कुमार एक कवि और निबंधकार के रूप में काफी जाने गए. उन्होंने 50 से अधिक पुस्तकें लिखी थी और उनका अधिकांश लेखन असमिया भाषा में ही हुआ था.
And today we also celebrate the birthday of Ustad Shahid Parvez Khan. He stands as one of the world's greatest living sitar players, a true maestro who masterfully bridges centuries of musical tradition with innovative brilliance. Recipient of numerous prestigious awards, including the Government of India's Padma Shri and the Sangeet Natak Academy Award, Shahid Parvez Khan regularly tours across India, Europe, North America, and enthralling audiences everywhere. And today, we have another classical sitarist of Maihar Gharana having his birth anniversary today, Pandit Nikhil Ranjan Banerjee. Along with Pandit Ravi Shankar and Ustad Vilayat Khan, he emerged as one of the leading exponents of sitar. He was a recipient of Padma Bhushan.
श्रोता, आपको बता दें कि आज जयंती है अरुण खेत्रपाल की. वे परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक थे. उन्हें यह सम्मान 1971 में मरणोपरांत मिला था. 1971 में हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना था.
एंड टुडे वी आल्सो रिमेंबर सर रॉजर मूर, who was an English actor and UNICEF ambassador. He's probably the most well-known for playing fictional spy James Bond in 7 movies from 1973 to 1985. He played James Bond more times than any other actor. He was also well-known for playing Simon Templar in the television show The Saint. He began his career by becoming a male model.
इसी के साथ ही इजाजत दीजिए निखिल और अनुजा को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं पर संपन्न करने की. फिर मिलेंगे.
नमस्कार,
नमस्कार.